वो तिल का आद, ये थे आद। अभी ऐसे लग रहा है जैसे एक तस्वीर दिखाई जा रही है, ये देखो आद। जहदू भी आयाती रब्बीम, उन्होंने इनकार किया अपने रब की आयात का। वह आसाऊ रसूलहू, और उन्होंने नाफरमानी की रसूलों की। व तबऊ अमरा कुल्ली जब्बारिन अनीद, और उन्होंने पैरवी की अमर की, हुक्म की। किसके हुक्म की? अल्लाह रसूल के नहीं, हर जालिम के, इनाद रखने वाले के, दुश्मनी, हक से दुश्मनी रखने वाले के हुक्म की। यानी ये उनके तीन कसूर थे। नंबर वन क्या था? अल्लाह ताला की आयात को ही नहीं मानते थे, रसूलों का इनकार, उनकी नाफरमानी। रसूलों की नाफरमानी कैसे उन्होंने की? उन्होंने, उनके पास तो सिर्फ हूद अलैहि सलाम आए थे, उन्होंने तो सिर्फ उनकी नाफरमानी की थी। मगर जैसे कि आपको पहले भी बताया, एक रसूल का इनकार, सबका इनकार। एक रसूल की नाफरमानी, सबकी नाफरमानी। क्यों? इसलिए कि सबका ही मैसेज एक ही है। एक की नहीं मानी तो इसका मतलब सबके मैसेज को डिनाई किया। एक की नाफरमानी की तो वो अपनी तो नहीं कोई बातें कर रहे थे ना। सब रसूलों को एक ही तरह के अहकाम अल्लाह ताला ने दिए कि एक अल्लाह की इबादत करो। एक को इनकार कर दिया, सारों के ही पैगाम का इनकार कर दिया, और उन्होंने पैरवी की हर जालिम की और सच्चाई से जान छुड़ाने वाले की, जो सच को नहीं मानता, जो हद से मानता नहीं कि सिर्फ बात नहीं, इनाद रखता है, हक से दुश्मनी रखने वाले की। और ये बहुत कॉमन होता है कि लोग उन लोगों की पैरवी नहीं करना चाहते जो दीनदार हों, जो मजहबी हों, क्योंकि हमारे ऊपर तो कोई लेबल ना लग जाए, हम तो कोई, हम भी ऐसे ही ना कहलाने लगेंगे, ये मुल्लानी है। वो उनकी करते हैं पैरवी, वो उनको अट्रैक्ट करते हैं जो जाबिर किस्म के लोग होते हैं, दबाव वाले, सख्त प्रेशराइजिंग लोग होते हैं, और वो जो हक से इनाद रखते हैं, जानबूझ के हक की मुखालफत करने वाले होते हैं, उनके पीछे लोग चलते हैं। अब देखें, ये आम अमूमी रवैया कौमों का होता है। और मैं आज आपको एक बात इस साथ ज़िमनम ने एक बात बताना भी चाहती हूँ। देखें, बाज़ दफ़ा हम ये सोचते हैं ना कि बस हमने एक दफ़ा कलमा पढ़ लिया है तो बस वो काफ़ी है, या हम एक पैदाइशी मुसलमान घराने में पैदा हो गए तो बस ये काफ़ी है, और बस हमें अब कोई ख़तरा नहीं है, अब हम हमेशा के लिए मुसलमान हैं, मरते दम तक, चाहे कुछ भी हम बोलते रहें, जो कुछ भी हम कहते रहें, कोई काम भी हम करते रहें। तो ऐसा नहीं है, बाज चीजें नवाकिज़े इस्लाम है। नून वाव अलिफ कौफ और दौद, नवाकिज़े इस्लाम। जैसे आपने नवाकिज़े वुजू सुना हुआ, क्या चीज होती है नवाकिज़े वुजू? वो कहते हैं वुजू को तोड़ने वाली चीजें, है ना? यानी आपने वुजू किया होता है तो फिर वो कुछ वो वाले काम अगर उनमें से कोई कर लिया तो वुजू टूट जाएगा। इसी तरह नवाकिस का मतलब है तोड़ देने वाली चीजें, तो इस्लाम के भी कोई नवाकिस हैं, इस्लाम को तोड़ देने वाली चीजें हैं, जिनकी जद सीधी कलमे पे पड़ती है। यानी जो, जब वो काम आप करेंगे तो आपका कलमा जो आपने पढ़ा हुआ वो टूट जाएगा। नवाकिस सलात भी तो होते हैं, नमाज में अगर आपने बात कर ली नमाज टूट जाएगी। रोजा के तोड़ने वाले भी नवाकिस होते हैं, जो आपने मसलन आपने जानबूझ के खाना पीना शुरू कर दिया तो नवाकिस सोम है, ठीक है। इसी तरह अकीदे में वो आमाल हैं जो आदमी के कलमे को तोड़ देते हैं, और जिनमें कौन कौन से अमल हैं वो मैं आज आपको बताऊंगी। ये इतने खतरनाक हैं जिना से भी ज्यादा और चोरी से भी ज्यादा, क्योंकि नवाकिज इस्लाम कबायर की वो किस्म है जो शराबी होने से भी ज्यादा संगीन है, जो रिश्वत और करप्शन से भी ज्यादा संगीन है, क्योंकि इससे इस्लाम ही खत्म हो जाता है। इस्लाम खत्म, ये कुफर और शिर्क के बाब में से है। और अगर कोई इंसान जानते बूझते नवाकिज़े इस्लाम का कोई गुनाह कर लेगा और उसी हालत में उसकी मौत वाकई हो जाएगी, तो वो जहन्नुम में जाने का इम्कान है, फिर जहन्नुम में चला जाएगा। तो ये बड़ी से बड़ी नेकियों को भी खा जाते हैं नवाकिज़े इस्लाम, क्योंकि जब तौहीद ही नहीं रहेगी, ईमान ही नहीं रहेगा, तो फिर सभी का खत्म हो गया ना, फिर कितनी भी नेकियां कर लें बस फिर वो तो नेकी है ही नहीं। इसलिए वो हदीस है ना, फितनों का ऐसा दौर आएगा जिसमें सुबह को इंसान मोमिन होगा, शाम को काफिर हो जाएगा, शाम को मोमिन होगा, सुबह को काफिर हो जाएगा। तो क्यों है? तो फितनों के ऐसे दौर में ये कुछ ऐसे अमल होंगे जो इंसान को दायरा इस्लाम से ही निकाल देंगे, कुफर में ले जाएंगे, इन लोगों के हाथ से इस्लाम का दामन छूट जाएगा। तो इंसान को जरूरी है कि पता होना चाहिए कि इस्लाम में दाखले के रास्ते कौन से हैं और इस्लाम से खारिज होने वाले रास्ते कौन से हैं, ठीक है? और इसके लिए आज मैं आपको वो 10 बातें बताना चाहती हूँ जिनको उलमा ने बताया कि ये नवाकिज़े इस्लाम है। शेख मोहम्मद तमीमी अपने मशहूर रिसाला है उनका नवाकिज़े इस्लाम, उनमें उन्होंने ये 10 बातें बताई हैं। बहुत ज़्यादा इनकी डिटेल में जाने का तो टाइम नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ओवरऑल ये थोड़ी थोड़ी इन बातों का बता देती हूँ। पहली बात जो इस्लाम से इंसान को निकाल देती है कि इंसान अल्लाह की इबादत में, उसकी बंदगी में किसी को भी शरीक ठहराए, चाहे उसकी जात में शरीक ठहराए कि किसी हस्ती को कह दे कि ये उसका बेटा है या ये तो आपको पता ही है, या उसकी रबूबियत में, उसके रब होने में किसी को शरीक ठहरा दे कि तदबीर कायनात की कोई और करता है, या मुझे किसी और ने पैदा किया है, या रोजी कोई और देता है, या मुश्किल कुशाई कोई और करता है, या हाजत रवा कोई और है, वो काम जो सिर्फ अल्लाह ताला करता है, वो इंसान अकीदा रखे कि अल्लाह के सिवा कोई और हस्ती भी है जो करती है और मुझे कुछ दे सकती है, और अलूहियत में शिर्क, मसलन अल्लाह ताला के अलावा जो मैंने अभी आपको बताया, ये अलूहियत में शिर्क ही है, इबादत में शिर्क अभी आपको बताया ना, सजदा करना किसी और को, किसी के नाम के ऊपर नजर नियाज करना, किसी को पुकारना, दुआ करना किसी से, चढ़ावे चढ़ाना किसी और के नाम पे, ये सारे इबादत में शिर्क है। तो उलूहियत में शिर्क, रुबूबियत में शिर्क, जात में शिर्क, ये शिर्क की डिफरेंट किस्में हैं। दूसरा नंबर टू कौन सा है नवाकिज़ इस्लाम, कि इंसान अपने और अल्लाह के दरमियान वास्ते और वसीले बना के उनको पुकारने लगे, उनसे शिफात का सवाल लिए, उन पर तवक्कुल करे, उन पर सहारा लेने लगे। ये भी उम्मत का इजमा है, उम्मत इस बात के ऊपर मुत्तफिक है कि ये इंसान काफिर हो जाता है, कि किसी को खुदा के यहां सीढ़ी बनाना, कि वो जो सीढ़ी है जी ये, किसी और से रिस्क रोजी मांगना, उस पे तवक्कुल करना कि मेरा भरोसा इस पे है, तो ये भी एक कुफर में दाखिल होना है। क्योंकि सूरह जुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया जिन्होंने उसके सिवा दूसरों को कारसाज बनाया और कहते हैं हम तो उनकी इबादत सिर्फ इसलिए करते हैं कि अल्लाह तक हमारी रसाई करा दे, अल्लाह के करीब कर दे हमें, लियुकर्रिबूना इलल्लाह, हम तो सिर्फ ये कहते हैं, मानते हैं अल्लाह को, लेकिन उनके पास जाते हैं कि वो हमें अल्लाह से करीब कर दे। तो मुश्किल कुशाई या हाजत रवाई की गर्ज से अगर कोई गैर अल्लाह से दुआ करता है, या फलां मुझे रिज़्क दे दे, या फलां, या अली मदद मेरी फरमा दे, या दाता गंज बख्श, या अब्दुल कादिर जिनानी, या अजमेर, या फलां मुझे शिफा दे दे, मेरा बेड़ा पार कर दे, आप तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुआओ मुखुल इबादत, दुआ है इबादत का मगज़ है, और दुआ हुवल इबादत, दुआ इबादत है, तो उसने तो फिर गैर अल्लाह की इबादत कर ली ना। तीसरा वो जो मुशरिकीन को काफिर ना करे कहे, या उनके काफिर होने में शक करने लगे, या उनके मजहब को अच्छा कहने लगे, या ये समझने लगे कि ऐसा शख्स भी काफिर हो जाता है, तो यानी उनके मजहब को अच्छा कहने लगे, उनको काफिर ही नहीं समझता, वो कहता है कि नहीं इसमें क्या बात है, तो कोई बात नहीं है, ये भी ठीक है, हर एक ही ठीक है, सारे ठीक है, इनको काफिर ना कहो। इस तरह ही ऐसे नहीं हमें करना चाहिए। हम तो रोशन ख्याल हैं, हम तो यानी मॉडर्न हैं। अब ये तो क्या मौलवियों वाली बातें हैं। तो मुशरिकों के काफिर होने पे या उनके कुफर के ऊपर इनको शक है। तो कहते हैं हर भाई हर एक का अपना मजहब है, किसी को मत कहो कि उनका मजहब गलत है। हम अपने मजहब पे चलते हैं, दूसरे अपने मजहब पे चलते हैं। पता नहीं अब ये तो अल्लाह ही जानता है कि कौन सही है। कहते तो वो भी यही है कि हम सही हैं। तो ये क्या बात है, ये तो कुफर है। यानी इसका मतलब जितने रसूल बातें लेकर आए वो सारे ऐसे ही लेकर आए। ये सारी कुरान के अंदर बातें हैं, कोई समझ ही नहीं आ रही कि हक क्या है और बातिल क्या है। कहते नहीं हमें क्या पता भाई कौन सही है, भाई किसी को कहना ही नहीं चाहिए। वैसे चाहे नमाज रोजा कर रहे, मगर अगर वो यही नहीं समझते कि ये कुफर है, तो फिर ये भी इंसान को यहां तक पहुंचा देता है कुफर तक। और इससे बढ़ के तो और भी लोग हैं जो उनके मजहब को अच्छा भी समझते हैं, उसके लिए प्रेजिंग वर्ड्स भी बोलते हैं, तारीफ भी करते हैं, सताइश के अल्फाज बोलते हैं, तो ये इंसान को ईमान से खारिज कर देता है। आप उनके मजहब को अच्छा समझ रहे, आप उनकी होली को, दिवाली को, क्रिसमस को, इन चीजों को सबको अच्छा समझते हो, इसकी तारीफ भी करते हो। और ये उनके बारे में है जिनके मैंने ये जो आपको बात कही है ना कि जिनको काफिर कहने में पूरे अहले इस्लाम का इत्तेफाक है कि ये काफिर है, उनको अगर आप काफिर ही नहीं समझते और कहते हैं कि पता नहीं क्या है, पता नहीं क्या, पता सही हो पता ही नहीं, अल्लाह ही जानता है, ये तो इसका मतलब आप शक में है ना। आज के दौर में कादियानियों को, ये इस्माइलियों को, इनको सब ने कहा है कि ये काफिर है, कोई इसमें इख्तलाफ नहीं। फिर भी अगर हम समझे नहीं, ये तो मुसलमान ही है, चलो कोई बात नहीं, तो ये काफिर को काफिर कहना और समझना है, ये नहीं कि हाँ नहीं कोई बात नहीं ये ठीक है। चौथी बात ये कि जो ये समझे कि कोई हिदायत या कोई कानून आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाई हुई हिदायत और कानून से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा जामे है, ज्यादा अच्छा है, वो भी काफिर हो जाता है। अब आज इंसान कहता है कि हिदायत के लिए यानी मजहब के लिए तो आप जाएं अल्लाह रसूल की तरफ, लेकिन बाकी वो मजहबी मामलात हैं जी, दुनिया के मामलात के मामले में जो हमने करना है उस मामले में कोई दीन वीन की बात नहीं है, कोई अल्लाह रसूल की बात मानने की जरूरत नहीं, फिर वो दूसरी तरफ देखते हैं। ठीक है, तो ये भी इंसान को कुफर तक पहुंचा देता है। और दीन के किसी भी फर्ज का इनकार करना, मसलन नमाज है, जकात है, हज है, इनका इनकार कर देना, इनकार कर देना कि मैं इनको नहीं मानता, सूद का के हराम होने का इनकार कर देना, शराब के हराम होने का इनकार कर देना, जिना के हराम होने का इनकार कर देना, ये भी इंसान को काफिर बना देता है। हाँ ये जरूर है अगर एक इंसान शराब पीता है, सूद खाता है, लेकिन वो कहता है कि हाँ नहीं ये हराम है, लेकिन बस मैं क्या करूं मेरी ये मजबूरी, तो वो काफिर नहीं होता। लेकिन एक वो इंसान काफिर हो जाता है तो कहता है नहीं शराब हलाल है, नहीं सूद हलाल है, वो काफिर हो जाता है, चाहे वो खुद नहीं पीता, चाहे तो वो खुद सूद नहीं खाता। पांचवा, वो इंसान जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन और शरीयत की किसी भी बात से नफरत करता है या बुग्ज रखता है, ऐसा शख्स काफिर हो जाता है, चाहे वो उस पर अमल नहीं भी करता लेकिन वो काफिर हो जाता। अल्लाह ताला ने सूरह मोहम्मद में फरमाया ना, ज़ालिक भी अन्नम करीहु मा अनज़लल्लाहु फअहबत अमालहुम, ये इसलिए कि वो कराहत करते थे जो अल्लाह ने नाजिल किया, तो उनके सारे अमल गारत हो गए। यानी ऐसा आदमी दीन से खारिज हो जाता है। जैसे मसलन मिसाल के तौर पे बहुत से आज लोग हैं, उनको दीन की बातें एक आंख नहीं भाती, उनको इतनी एलर्जी होती है, किसी को पर्दे में देख के इतनी चिढ़ होती है, कोई नमाज उनको अच्छी नहीं लगती, वो ये विरासत में ये क्या बात हुई, औरत का हिस्सा आधा कर दिया गया मर्द से, ये क्या बात हुई, औरत की गवाही आधी है मर्द से, ये क्या बात हुई, ये चार शादियां कर सकता है आदमी, ये कौन सी वो बातें हैं, ये क्या। अब ये तो साफ सरीहन बातें हैं, बुग्ज रखना दीन की किसी भी बात से, ये भी इंसान को कुफर। तो अगर आपको अच्छी ही नहीं लगती अल्लाह रसूल की बातें, तो फिर आप कैसे ईमान वाले हैं? अगर आपके दिल में नफरत है इन चीजों से, तो कैसे ईमान वाले? एक आदमी किसी चीज पे अमल नहीं कर पाता ना, वो अलग बात है, उससे वो काफिर नहीं होता, लेकिन दिल में तो एहतराम होना जरूरी है। अगर दूसरी तरफ कोई इंसान खार खाता है दीन से, दीन की चीजों से, दीन के शायर से, तो ये तो कुफरिया रवैया है, बेजार हो जाना दीन की बातों से। फिर सिक्स्थ, वो बंदा है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की किसी बात या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र करदा किसी सवाब या अजाब का मजाक उड़ाए, वो भी काफिर हो जाता है। सूरह तौबा में आप पढ़ चुके हैं ना, कुल अबिल्लाही व आयाती व रसूली कुंतुम तस्तहज़ी हूं, तुम्हें अल्लाह ही रह गया है, उसकी बात, उसकी आयतें, उसकी रसूल, उसके साथ तुम दिल लगी करते हो, हंसी मजाक करते हो। तो अल्लाह ताला ने वहां फरमा दिया, कद कफर तुम बादा ईमानी को, वो तो काफिर हो गए जो वो ऐसे करते थे, वो मुनाफिक ऐसे करते थे, वो तो काफिर हो गए। तो आज सारे क्या मोमिन रह जाते, जब वो अल्लाह की जन्नत का, जहन्नम का, फरिश्तों का, हूरों का, पुल से रात का, इतने मजाक, किसके ऊपर चुटकुले लतीफे बनाए हुए हैं। ये तो वो चीजें हैं जिन पे ईमान वाले सहाबा कराम की आंखें आंसुओं से भर जाती थी, रोते थे वो इन बातों पे, जन्नत जहन्नुम अजाब कबर, इन बातों के ऊपर। इनके लिए वो लतीफे हैं, उनके लिए फरिश्ते मुनकर नकीर लतीफे हैं, ऐसी शायरी करते हैं, ऐसे शेर हैं। मैं आप कोई कहना नहीं चाहती शेर, मगर आप खुद देख लेंगे, कभी मुल्लाओं की दाढ़ी का मजाक, कभी मस्जिद का मजाक, मस्जिद ढा दे मंदिर ढा दे, कोई चीज का, यानी अल्लाह के शायर की कोई भी अहमियत नहीं है। सबको तान का निशाना, मजाक का निशाना बनाना, उसके बाद सोचना हम तो बड़े ईमान वाले, लोगों को हंसाना इन बातों पे मजलिसों में बैठ के। ठीक है, ये मैं आपको ना बहुत सीरियस बातें बता रही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, और वो अनजाने में कहीं ऐसी बात करके कहीं ये ना हो कि कुफर में दाखिल हो जाए। उलमा कहते हैं जो इनमें से कोई बात कर ले, तो वो उसके बाद उसको ईमान की तजदीद करने की जरूरत है, दोबारा कलमा पढ़े वो, वो तो कुफर में दाखिल हो गया, ईमान से निकल ही गया, इस्लाम से निकल गया वो। सातवीं बात, जिससे दायरा इस्लाम से इंसान निकल जाता है, वो क्या है, जादू, चाहे मोहब्बत करवाने के टोने हो या मोहब्बत छुड़वाने के, जो ये करे या इस पे राजी हो वो काफिर हो जाता है। और सूरह बकरा में हम पढ़ चुके हैं, वमा युअल्लिमानी मिन अहदिन हत्ता यकुला इन्नमा नहनु फितनतुन फला तकफुर। वो फरिश्ते कहते थे कि ना तुम ये जादू की चीजों को ना सीखो, तो वो कहते थे तुम ये कुफर में मुबतला ना हो जाना कहीं तुम, यानी ये इंसान को काफिर कर देती हैं। और आज ये चीजें तो हमारे माशरों में इनके चलते हैं ना कारोबार, तभी वो आज तक बैठे में अपनी दुकानें खोल के। और याद रखिए, नजूमी भी इसमें आता है, किस तरह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, जो आदमी नजूम का कोई एक शोभा भी अपनाता है, वो दरअसल जादू का एक शोभा इख्तियार करता है, तो उसको जादू कहा गया। तो ये जो किस्मतों के हाल बताते हैं, या ये जो जादूगर हैं, या ये जो सितारों की जायचे बनाते हैं, तारीख पैदाइश वगैरह का हिसाब रख के लोगों को गैब की खबरें सुनाते हैं, किस्मत का हाल बताते हैं, ये सब जादू की किस्म है। जादू का खरीदना, जादू के करना या करवाना, सब इसमें ही शामिल है। ये हॉरोस्कोप्स, ये बुर्जों का इल्म, सारा जादू का की किस्म है। इसके वो नजूमी प्रोफेसर कहलाते हैं आप तो, और आप देखें कि उनके पीछे कितने लोग चलने वाले हैं। एट्थ चीज जिससे इंसान दायरा इस्लाम से निकल जाता है, वो है काफरों का रफीक बनना, उनका हलीफ बनना, उनकी उनका सपोर्टर बनना, मुसलमानों के खिलाफ उनका मुआविन बनना। ये भी जाहिर है इंसान को इससे निकाल देता है, क्योंकि वमैय तबल्लाहु मिनकुम फइन्नहु मिनहुम, अल्लाह ताला ने फरमाया जो इनको अपना वली बनाएगा वो इन्हीं में से है, तो इसमें कोई दूसरी बात नहीं है। फिर इसी तरह नाइन्थ चीज, किसी को शरीयत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तेबा से बाला तर जानना, यानी मैं एग्जेम्प्टेड हूँ, मेरे ऊपर शरीयत की पाबंदी जरूरी नहीं है। कोई इंसान खड़ा होकर ये कहना शुरू कर दे या आप समझे कि नहीं जी इनको तो ना नमाज की, ये बड़े पहुंचे हुए बड़े वलीउल्लाह है, इनको तो ना नमाज की जरूरत है ना किसी चीज की जरूरत है, ये बस वैसे ही औलिया अल्लाह बन गए। तो कोई इससे अबव नहीं है, किसी को भी इससे अबव समझना। अच्छा फिर 10th चीज जो आखिरी है वो है दीन से बिल्कुल ही एराज किए बैठना, ना इसका इल्म होना ना इस पे अमल करना। सूरह सजदा में अल्लाह ताला ने फरमाया ना वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बि आयाति रब्बी थुम्मा आरादा अन्हु इन्ना मिनल मुजरिमीन मुंतकिमून। उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जब उसके सामने रब की आयात के जरिए नसीहत की जाती है वो मुंह पर फेर लेता है। यानी ऐसा आदमी जिसको दीन से कोई सरोकार नहीं, कोई वास्ता नहीं, अल्लाह ने किताब उतारी नहीं उतारी, रसूल भेजा नहीं भेजा, को कौन सी चीज हलाल की कौन सी हराम की उसकी जाने बला, उसको क्या, कोई तवज्जो नहीं शरीयत की तरफ, कोई तवज्जो नहीं इस तरफ की तरफ के क्या फर्ज किया अल्लाह ने, क्या हराम किया अल्लाह ने, गुनाह क्या है, सवाब क्या है, लम्हा भर भी उसकी तरफ तवज्जो नहीं। तो ये भी इंसान को बुनियादी तौर पे कुफर तक ले जाता है, चाहे वो अपने आप को कलमा गो कहता रहे। इसीलिए उलमा कहते हैं कोई आदमी अगर अल्लाह की बंदगी नहीं करता तो लाजमी तौर पे शैतान की बंदगी जरूर करता है। इसलिए कि दुनिया में कोई ऐसा नहीं जो कहे कि मैं किसी की इबादत करता ही नहीं, अगर वो अल्लाह की नहीं करता तो शैतान की करता। तो जो दीन के किसी चीज की तरफ आए ही नहीं, जिंदगी भर उसको ख्याल ही ना आए कि कोई दीन है भी कि नहीं है, वो उसको नहीं परवाह है कि क्या है, वो भी फिर कुफर तक पहुंच जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया ना कि उस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इस दौर के लोगों में से जो यहूदी है या ईसाई हो जिसने मेरा सुन रखा हो फिर वो उस चीज के साथ जिसे मैं लेकर मबूस हुआ ईमान ना लेकर आया और इस हाल में ही मर गया, लाजमन वो दोस्तियों में से, इसके लिए जरूरी है कि वो इस तरफ को आए। तो ये 10 चीजें हैं जो उलमा ने गिनवाई हैं कि जो नवाकिज़ इस्लाम है। हम सोचते हैं कि इस्लाम नहीं है, हमारा ईमान है ना इस्लाम नहीं है, तो फिर जो इस्लाम के बगैर दुनिया से चला गया वो आग में जलेगा। लेकिन कितनी अजीब बात है कि हम ये समझते हैं साथ साथ कि इस्लाम में आने और मुसलमान रहने के लिए कोई कानून नहीं है, कोई कायदा नहीं, बस नाम है वो बस मुसलमानों वाले हैं, उसके अलावा कोई भी चीज़ नहीं है जो ज़रूरत है। तो इस नेमत को पाना इस तरह होता है ला इलाहा इल्लल्लाह कलमा तैयबा पढ़ के, और इस नेमत को खो देने का ताल्लुक किससे है कि आदमी कोई ऐसा कौल या कोई ऐसा फेल या कोई ऐसा अकीदा या कोई ऐसा रवैया इख्तियार करता है जो ला इलाहा इल्लल्लाह के कलमे को उसके लिए तोड़ देता है। ये 10 चीजें हैं जो मैंने आपको बताई हैं, नवाकिज इस्लाम इनको कहते हैं। ये हर गुनाह को नहीं कहते, अब हर गुनाह को पकड़ के कहना ये भी नवाकिज इस्लाम, बताके कबीरा गुनाहों को भी नहीं नवाकिज़ इस्लाम कहते। जो मैंने आपको बताया उसकी रोशनी में आप देखें। तो ये जरूरी है कि हम इनको समझें। इसके अंदर देखें आप इन ऐसे लोगों, ऐसे जो ये मैंने बात इससे शुरू की थी कि ऐसे लोगों का इत्तेबा करना, ऐसे लोगों के पीछे चलना जो कि जालिम है और हक से इनाद रखते हैं, हक से उनको दुश्मनी है, हक इनको बुरा लगता है, एलर्जिक है या उसका मजाक उड़ाते हैं क्योंकि अंदर नफरत है ना, उनकी इत्तेबा कभी नहीं करनी, उनके पीछे नहीं चलना। ये भी नवाकिज़ इस्लाम में से है। वउतबिउ फी हादिहि दुनिया लानत व यौम अल क़ियामा, उनके पीछे लगा दी गई इस दुनिया में भी लानत और क़ियामत के दिन। कौम आद के पीछे लानत लग गई है, यानी लानत क्या होती है, ज़िल्लत और रुसवाई और अल्लाह की रहमत से दूरी। अल्लाह की रहमत ही नहीं है तो फिर ज़िल्लत और रुसवाई ही है ना। अला इन आदन कफरू रब्बहुम खबरदार, ये सुन लो ये बात कि बेशक आद ने इनकार किया था अपने रब का। हम तो इसको कोई बड़ी बात ही नहीं समझते। अच्छा कोई बात नहीं, अगर इनकार किया भी हो, किसी ने अल्लाह ताला का इनकार कर भी रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छे काम तो बहुत कर रहा है ना। नहीं, जब कोई अल्लाह का इनकार करता है और इस दुनिया से इस हाल में चला जाता है तो उसके ऊपर लानत है। काफरों के ऊपर अल्लाह ताला ने लानत भेजी, वो अल्लाह की रहमत से दूर है। अला बुअदा लि आदिन कौमी हूद, खबरदार दूरी है, लानत है आद के लिए जो हूद अलैहि सलाम की कौम थी। ये दूर कर दी गई अल्लाह की रहमत से। दुनिया में भी इनका अंजाम बुरा हुआ और आखरत में भी उनके लिए लानत है। वह इला थमूद अखाहुम सालेहा, और समूद की तरफ उनके भाई सालेह अलैहि सलाम को भेजा। कहला या कौमे अबुदुल्लाह, उन्होंने भी क्या कहा, ए मेरी कौम अल्लाह की इबादत करो। अब इबादत का मतलब पता चल गया ना आपको कि इबादत के क्या कंपोनेंट्स हैं। मैंने आपको क्या बताया, अगर आपसे पूछा जाए इबादत के क्या कंपोनेंट्स हैं, क्या बताएंगे आप, जो मैंने आपको शुरू में बताया, इताअत, मोहब्बत, सजदा, दुआ, नजरो नियाज, ये सब इबादत के कंपोनेंट्स हैं। मालकुम मिन इलाहिन गैरो, नहीं तुम्हारे लिए कोई इलाह, इलाह कौन होता है, जिसकी इबादत की जाती है। तो किसी और की इबादत नहीं करनी सिवाय उसके, उसके अलावा कोई इलाह नहीं है, माबूदे बरहक नहीं है, इबादत के लायक नहीं है। इसीलिए हम कहते हैं ला इलाह, नहीं है कोई इलाह इल्लल्लाह, ये कलमा ही है जो उन पैगंबरों का भी पैगाम था और आज हमारे लिए भी यही है। तो ये कलमा ही सिखा रहे हैं लोगों को। वह अंशाकुम मिनल अर्द वस्तअमरकुम फीहा, उसी ने पैदा किया तुमको जमीन से। पता है अल्लाह ताला की हम क्यों इबादत करें, इसलिए कि हमें पैदा उसने किया। जो पैदा करने वाला है, जो खालिक है, वो ही मालिक है और उसी की इबादत होनी चाहिए। इसमें सिंपल बात है, कोई तीसरी बात ही की इस गुंजाइश ही नहीं है कोई, या ऐसी कोई बात नहीं है जो कोई बड़ा फलसफा है जो समझ ना आए। तो ये कौमे समूद जो थी ना, इनकी बस्तियां हिजर में थी, हिजर पत्थर को कहते हैं। उन्होंने भी पत्थर तराश तराश के, पहाड़ तराश तराश के अपने घर बनाए हुए, और आज भी आप देख सकते हैं, बाज दफा को खोलते हैं, बाज दफा उन्होंने बंद किया होता है। अब पिछले 2 साल पहले मैंने पता किया था तो उन्होंने बंद किया हुआ था जब हम उमरे पे जा रहे थे, ये समूद की जो बस्तियां थी, वरना मेरा था कि वहां पे भी जाके देखा जाए। तो काफी दूर निकल के हैं, लेकिन आज तक वो उसी तरह अंदर अंदर चीजें बनी हुई हैं, अंदर अंदर उनके बाजार थे, अंदर ही उनके घर थे, अंदर ही उनके कारोबार थे, वैसे के वैसे पहाड़ खड़े हुए। लेकिन कैसे अल्लाह ताला ने, इन्होंने सोचा कि आद तो आद इनसे पहले थे ना, समूद इनके बाद आए, इनको आदे सानी भी कहते हैं, ये भी बहुत तरक्की याफ्ता थे बहुत। इनको अल्लाह ताला ने फरमाया ना वस्तअमरकुम फीहा, तुमको जमीन में आबाद किया, बहुत तरक्की थी इनकी। तो इनकी तरक्की का ये हाल था कि सोचिए उस जमाने में, हम तो आज मतलब इमेजिन भी नहीं कर सकते कि अगर क्रेन्स ना हो, ये मशीनरी ना हो, तो उसके बगैर कैसे खोदा जाए पहाड़ों को। सब मशीनरी यूज करते हैं, वो क्या करते थे यूज, उनके पास क्या था, या वो इतने ताकतवर थे या क्या था जो कि उन्होंने इस तरह से पहाड़ तराश लिए, आज तक भी नहीं लोग बना सके। तो उन्होंने सोचा कि उनको तो आंधी तूफान, आंधी ने, हवा ने उनको खत्म कर दिया, तो हम पहाड़ों के अंदर छुप जाएंगे, हमारे ऊपर कुछ ऐसी चीज आए तो। ये नहीं सोचा कि उनको तो हलाक किया उनके आमाल ने, उनके अबद अकीदे ने, तो हम उसकी इसलाह करें। ऐसे ही आज भी दुनिया में लोग क्या करते हैं, जब वो किसी कौम की कोई ऐसे मसले का सुनते हैं, किसी को कोई ऐसी आफत आ गई उनके ऊपर, तो मसलन जलजला आ गया मिसाल के तौर पे, तो वो अगली दफा वो इमारतें बनाने की कोशिश करते हैं जो जलजला प्रूफ हो, जिसमें जलजले का ना असर हो। लेकिन वो ये नहीं सोचते कि वो सिलसिला क्यों आया, क्या उनके अमाल में कोई ऐसी चीज थी जो अल्लाह ताला को नापसंद आ गई, क्योंकि सब चीज अल्लाह के इज़्ज़त से होती। कोई ऐसे काम थे जो वो करते थे, हमने वो काम छोड़ने, उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं हुई। मगर हाँ, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स बैठ के इस पे जरूर बहसें करते नजर आएंगे कि अब हमने ये करना है, अब ये एहतियाती तदाबीर ऐसे इस्तेमाल की जाए, ऐसे ऐसे किया जाए, कोई सुनामी आ जाए तो उसके लिए ऐसे किया जाए। बस सुनामी क्यों आई, ये तुम सोचते नहीं हो। थोड़ा उन्होंने भी आज के लोगों की तरह एहतियाती तदाबीर के तौर पे इस तरह से पहाड़ बना बना के अंदर छुपने का सोचा। तो अल्लाह ताला ने उनको बड़ा पैदा किया और उनको बड़ा कुछ दिया था इस दुनिया में, बड़ा अच्छा आबाद किया था उनको यहाँ पे, खाना पीना उनकी जो भी जरूरियातें जिंदगी थी ना वो सब उनको मुहैया की थी। तो वो कहते हैं सालेह अलैहिस्सलाम कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, अल्लाह ने तुम्हें आबाद किया यहाँ पे, फस्तग़फिरुहु तो इस्तग़फार करो उससे, सुम्मा तूबू इलैही फिर तौबा करो उसकी तरफ, फिर उसकी तरफ पलट आओ, इन्ना रब्बी करीब मुजीब, तुम्हारा रब जो है ना करीब भी है मुजीब भी है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह ताला के ना दो बड़े प्यारे नाम है, बड़े प्यारे नाम है। और करीब का तो पहले हम पढ़ चुके हैं ना सूरह बकरा में, व इज़ा सअलक इबादी अन्नी फइन्नी करीब, जब मेरे बंदे मेरे बारे में पूछे तो मैं करीब ही हूँ। करीब कौन पूछे, ये नहीं कहा जब मुत्तकी लोग पूछे तो मैं उनसे करीब हूँ, अपने बंदों से करीब, जो भी अल्लाह का बंदा है अल्लाह सबसे करीब है। कितना करीब है, कितना करीब, वनहनु अकरबु इलैहि मिन हबलिल वरीद, हम तो रगे जान से भी ज्यादा तुम्हारे करीब हैं। इतना करीब तो कोई भी नहीं हो सकता कि उसकी रगे जान से भी ज्यादा कोई करीब हो जाए। इंसान बड़े लोगों के करीब होता है अल्लाह को छोड़ के, लेकिन वो ये नहीं सोचता कि अल्लाह ताला मुझसे कितना करीब है, कोई उतना नहीं हो सकता। वो शायर कहता है ना, मैं हजार तुझसे बाईद हूँ, ये अजब के तू मेरे पास है, मैं तो तुझसे दूर चला जाता हूँ अपनी गफलतों की वजह से, अपनी नाफरमानी की वजह से, लेकिन तू मेरे करीब होता है रगे जहां से भी ज्यादा। तो बंदा ही दूर जाता है, अल्लाह दूर नहीं जाता, वो करीब ही होता है। तो वो बताता है हमें कि मैं तुमसे करीब हूं, हालांकि वो अर्श पे है फिर भी वो इतना करीब है कि बंदे की हर धड़कन को सुनता है, उसके हर ख्याल को जानता है, उसके हर आंसू को जानता है, उसके हर परेशानी का उसको इल्म है, उसके हर दुख और गम में वो बाखबर है। और सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है उसके करीब होने की, बादशाह हो या फकीर, अमीर है या गरीब, औरत है या मर्द, जवान है या बूढ़ा है, सब उसके करीब हो सकते हैं। तो ये सारा कुरान अल्लाह के करीबी तो बुलाता है, अल्लाह बुला रहा है इस कुरान में कि मेरे बंदे मेरे करीब आ जा, मैं तेरा रब हूं, अल्लाह को छोड़ के कहाँ जाएगा। लेकिन देखिए आप दुनिया में सबके, कोई बड़ा आदमी हो ना, कोई बड़ा ताकतवर या पैसे वाला या कोई, उसके करीब जाने के लिए बड़े क्राइटेरिया होते हैं। आपका पैसा देखा जाता है, आपका स्टेटस देखा जाता है, कहीं हुस्नो जमाल देखा जाता है कि भाई उनके करीब ऐसे ही तो नहीं किसी को बिठा देंगे। लेकिन अल्लाह के करीब होने के लिए इनमें से किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, किसी झुर्रियों भरे चेहरे को लेकर भी कोई अल्लाह के करीब जा सकता है। दुनिया वाले कहेंगे तू इतना बुढ़ा हो गया अब तेरी क्या जरूरत है किसी को, घर बिठाओ इसको। बच्चे भी कहते हैं कि आपको क्या पता है, अब आप चुप कर जाएं। मगर वो रब जो है ना वो पहले से भी ज्यादा अपना दामने रहमत एक बूढ़े के लिए बिछा देता है। दुनिया जाए तुझे दुत्कारे, मैं तो तेरा रब हूं, मैं तो तेरे पास ही हूं, मैं तो तेरे करीब हूं। किसी के पास जेब में फूटी कौड़ी भी ना हो, कोई पैसा नहीं है, तो लोग कहते हैं लो इसको तो पीछे करो, हर कोई उसको झिड़कता फिरता, कोई उसको इज्जत नहीं देता, यहाँ तक रिश्तेदार भी बेगाने हो जाते हैं, ये क्या पुराने बोसीदा कपड़े पहने हुए, ना सर पे छत है ना इसके पास कोई पैसे है। लेकिन वो रब ये नहीं कहता, वो कहता बोसीदा कपड़ों वाला भी मुझे प्यार है, तू भी मेरा ही बनता, कोई बदशक्कल है लोगों से मुंह छुपाता फिरता है, क्योंकि कोई उसकी तरफ देखना नहीं चाहता, उसके लिए माशरे में बैठना मुश्किल है। और वो रब इतना करीम है, ऐसा मोहब्बत करने वाला है कि मेरे बंदे तू भी मेरा ही है, तुझे भी मैंने ही बनाया, तो कहाँ जाते हो उसको छोड़ के? वो तो करीब है, वो खुद फरमाता है मैं करीब। वो हर देखिए दुनिया की जो धूप छाऊं होती है ना, उसमें लोग साथ छोड़ जाते, लेकिन वो हर वक्त ही करीब है। कभी पुकार के तो देखो, दुनिया की परेशानियां आए या इंसान के ऊपर दुनिया के मसाइब आ जाते हैं ना, तो अपने भी नजरें फेर जाते हैं, मर कुर्बान जाए उस करीम जात पे जिसकी तरफ इंसान सारा वक्त उससे गाफिल रहता है, मगर जब वो मुसीबत आती फिर उसकी तरफ जाता है तो वो फिर उसको अपना लेता है। और वो कैसी जात है, हर जात से ऊपर जात, अकबर जात, अकमल जात, करीम जात, कैसी है कि वो किसी नेक परहेजगार को नहीं सिर्फ कहता कि मैं तुम्हारे से करीब हूं, मेरा हर बंदा इन्नी करीब उजीबु दावत दाई जदान, जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, कबूल करता हूँ, वो मुजीब है, मुजीब जवाब देने वाला, मुजीब है कि मतलब उसकी दुआओं को कबूल करने वाला, सुनने वाला, पूरी करने वाला। इंसान अगर अपने आप को अल्लाह से मांगते हुए पाता है ना, तो ये भी अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है, इसलिए कि अल्लाह ने तौफीक दी मांगने की, क्योंकि वो उसकी मांग को पूरा करना चाहता ही था, तो उसको तौफीक दे दी ना मांगने की, वरना उसको तौफीक ही ना देता। और वो मुजीब ऐसा मांगने वाला है, पूरा करने वाला, जवाब देने वाला है, जिससे जब चाहे मांगे आप। कोई कोई देखिए कोई भी लोग हैं, आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, किसी के दांत में दर्द है वो अपॉइंटमेंट लेने जाता है, वो 1 महीने की अपॉइंटमेंट दे देते हैं। अब आप क्या करें, आपको तकलीफ आ जाए वो महीने बाद आपको देखेंगे। अल्लाह ताला ये नहीं कहता कि तुझे दर्द आ जाए, तेरी तकलीफ आ जाए, तो उस वक्त आना, तेरी अपॉइंटमेंट तब है, अभी मैं दूसरों से डील कर रहा। सब एक ही वक्त में पुकारो, वो कभी बॉदर नहीं होता। हमारे साथ कोई सोया हो ना, साथ एक बिस्तर पे भी, और हम किसी तकलीफ में हैं, तो हम कहते हैं हाय अब इसको क्या उठाऊं, इसको क्यों बॉदर करूं मैं, ये डिस्टर्ब हो जाएगा। अल्लाह ताला तुम्हारे पुकारने से कभी डिस्टर्ब होता ही नहीं, कभी बॉदर होता ही नहीं। अल्लाह अकबर। और सारे हम ये नहीं कह सकते, इतने लोग अल्लाह से मांग रहे हैं, मेरी कब सुनेगा वो, मेरी सुनने के लिए कब टाइम निकालेगा वो, नहीं सारे ही मांग रहे हैं ना, वो सारों की एक वक्त में ही सुन रहा है और सबकी मांगों को पूरी कर रहा है, तो वो अल मुजीब है, जवाब देने वाला है। और उसके जवाब देने के अंदाज डिफरेंट हो सकते हैं, कभी वही चीज दे के वो जवाब दे देता है, कभी वो कोई मुसीबत टाल के, कोई बड़ी मुसीबत आने वाली थी उसको टाल के जवाब देता है, लेकिन तुम्हारी मांगों का जवाब जरूर देता है, उसका नाम ही अल मुजीब है। इन्ना रब्बी करीब मुजीब, कितनी प्यारी बात की ना हमने, करीब, कोई ऐसा करीब नहीं हो सकता कि दिलों के भेद भी जान ले, मगर वो ऐसा करीब है। अब कभी कभी इंसान ऐसी हालत में होता है कि वो कहता है मुझे समझ नहीं आती कि मैं अपनी बात कैसे बताऊं, मैं अपने गम का इजहार कैसे करूं, या मैं अपने मसले को किन अल्फाज में बयान करूं, मुझसे बताया नहीं जाता। अब अक्सर हम में से लोग ऐसे होते हैं, वो बोलने में इतने माहिर नहीं होते, अल्फाज का चुनाव वैसे नहीं कर पाते, ये अल्लाह ताला को बोल के बताने की जरूरत भी नहीं, वो ये भी जानता है कि हमारे दिलों में क्या है, वो चोट कितनी गहरी है वो ये भी जानता है, वो गम कैसा है वो ये भी जानता है, वो मसला हमारे लिए कितना बड़ा है वो ये भी जानता है, चाहे हम बोल के बताएं या नहीं बताएं। तो वो कहने लगे कि अल्लाह से इस्तग़फार करो, उसकी तरफ पलट आओ, वो तो जवाब देता है, यानी वो तौबा कबूल करता है, और वो करीब है, जो करीब हो बताएं फिर उसको छोड़ के कि किसी और के पास जाना और कहना तू सीढ़ी बन मेरे लिए। सीढ़ी तो बने तब वो जब कोई दूर तक पहुंचना है, दूर तक पहुंचना ही नहीं आपने, वो तो आपसे करीब है। जितना आप उस बंदे के पास जाएंगे ना कहने के लिए कि तू मेरी अल्लाह के सामने रख, मेरी तेरे आगे तो तेरी अल्लाह के आगे, वो तेरी तेरे आगे रखने की क्या जरूरत है, उसके आगे क्यों रखने के लिए जा रहे हैं, जिसके आगे रखनी है वो तो करीब है, फिर भी हमें समझ नहीं आती। और वो तो मुजीब है, फिर क्यों नहीं ईमान इन अस्माए हुस्ना पे। कालू या सालेह, वो कहने लगे ऐ साले कद कुंत फीना मरजुवन कबल हादा, तहकीक तू था हमारे दरमियान बड़ा ही उम्मीद वाला इससे पहले, यानी हमें तुझे से बड़ी उम्मीदें थी। अब जो देखें होनहार होता है, चाहे किसी बरादरी में हो या किसी फैमिली में हो, सबको उसे उम्मीदें होती ना कि ये भाई आगे कुछ नाम रोशन करेगा, कोई बड़ा ही कारनामा करेगा, ये बड़ा अच्छा किरदार वाला, अखलाक वाला, ये बड़ी अकल वाला है, समझ वाला है। तो इसका मतलब ये बात, इस बात का मुंह बोलता सबूत है कि वो कायल थे, वो कन्विंस थे कि नबी जो है उसका किरदार, उसका अखलाक, और वो बड़ी कोई यानी एक्सेप्शनल था वो लोगों में। इसीलिए तो वो कहते हैं आपसे तो बड़ी उम्मीदें थी हमें, इससे पहले आपसे इतनी उम्मीदें थी, यानी आप तो तू ये बातें करना शुरू हो गया, इससे पहले हम तो तेरी से बड़ी उम्मीद रखते थे कि तू कौम को, यानी इसका मतलब कौम में वो एक्सेप्शनल एक अपनी क्वालिटीज की वजह से एक स्टेटस रखते थे, हर दिल अजीज थे, लोग उनको बड़ा समझते थे कि ये बड़ा शरीफ, काबिल, जहीन और बड़ी खूबियों वाला आदमी है। इसी तरह हमारे यहाँ भी होता है ना कि अगर कोई बड़ा होनहार हो, बड़ा ही जहीन हो, तो फिर उसके बाद अगर वो दीन की तरफ चला जाता है, लोग कहते हैं हाय हाय तुझसे तो बड़ी उम्मीदें थी कि तूने बड़ा, बहुत बड़ा तूने बनना था आदमी, तू तो बड़ा डॉक्टर बनता, तू तो बड़ा PhD करता, साइंटिस्ट बनता, फलां इंजीनियर बनता, तो तू ये क्या शुरू करके बैठ गया, तुम किस तरफ को लग गए हो। उनको भी ये था कि तू तो बड़ा होन रहा था, तू किस तरफ चल पड़ा है, अल्लाह अल्लाह करने शुरू हो गया। अतनहाना अन्नाबुदा मा याबुदो आबाउना, वो तो काफिर थे तो ये कहते थे हमारे हाल ये है कि हमें क्योंकि वैल्यू ही नहीं है उस चीज की, कि ये चीज दीन चीज क्या है, क्योंकि दीन की कोई वक्त नहीं है ना, कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए हम ये सोचते हैं इसको बिल्कुल ही ऐसे, जो इस तरफ लग गया वो तो बेकार ही काम कर रहा है, असल काम तो हम कर रहे हैं ना, बड़े बड़े डिग्रियां ले रहे हैं तो असल तो हमारे काम है, ये क्या बेकार काम में लगा। तो कह रहे हैं कि क्या तू रोकता है हमको कि हम इबादत करें उनकी, जिनकी हमारे आबाओ इबादत करते थे, इतने अरसे से हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करें, हम उनको छोड़ दें वो तेरे कहने पे कि तू हमें रोक रहा है, तू तो खुद मौलवी बन गया, अब तू बड़ा अच्छा आउटस्टैंडिंग था, काबिल थे ना, तो इतना आउटस्टैंडिंग था, तो तू तो अब मौलवी बन गया, अब तेरे कहने के ऊपर हम वो ही छोड़ देंगे जिनकी हमारे बाप दादा आज तक पूजा करते रहे। वह इन्ना ना लगफी शक किन में माता दाऊ ना इलेही मुरीब, तो हम तो शक में हैं उस चीज के बारे में जिसकी तरफ तुम बुलाते हो, एक बेचैन कर देने वाले में बेचैन ही है हमें, यानी हम इतने कंफ्यूज हो गए हैं, हम तुमने हमें इतना शक में डाल दिया है ना, अब कोई चीज हमें समझ ही नहीं आ रही। काला या कौमी, मैंने कहा मेरी कौम, अर आई तो क्या भला सोचा है तुमने, इन कुंतु अला बय्यिनत मिन रब्बी व अतानी मिन्हु रहमतन, अगर मैं हूं वाकई वाजे दलील पर अपने रब की तरफ से और मुझे रहमत भी मिली है, उसने मुझे रहमत भी दी है, फमई अंसुरुनी मिन अल्लाह इन असैतुहु, तो कौन मुझे मदद करेगा मेरी अल्लाह के मुकाबले में अगर मैं उसकी नाफरमानी करने लगूं। तो वो कह रहे हैं कि क्या तुमने सोचा इस बात पे कि अगर मैं बय्यिना पे, बय्यिना क्या है, बय्यिना वो वाजे दलील को कहते हैं, यानी जो फितरत में अल्लाह ताला ने रख दिया ना कि अल्लाह तुम्हारा रब है, हक की पहचान फितरत में है इंसान के, पता है वो इंसान के अंदर है, जिस तरह से समझ लें कि इंसान को प्रोग्राम करके अल्लाह ताला ने भेजा है, तो अगर मैं उसके ऊपर हूं जो फितरत है, वह आतानी मिनहु रहमतन, और उसने मुझको रहमत भी अता कर दी, यानी ऑन टॉप ऑफ दैट उसने मुझे नबुवत भी दे दी, फिर भी अगर मैं मतलब तुम्हारी बातों में आता हूं तो कौन मेरी मदद करेगा अगर मैं नाफरमानी करने लगूं उसकी? तुम्हारी बातों में आके मैं अगर उसकी नाफरमानी करूं तो कौन मेरी मदद करेगा? तो क्या यहां पे सवाल है मेरा आपसे? इन कुंतु अला बय्यिना मिन रब्बी, वो कहते हैं अगर मैं हूं बय्यिना पर मेरे रब की तरफ से, तो क्या उनको शक था कि मैं पता नहीं हूं भी कि नहीं हूं? क्यों वो ऐसे कह रहे हैं? वो असल में अपने लिए नहीं कह रहे हैं, वो उनके शक को कह रहे हैं। अब इसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ कि मसलन अहमद दीदात साहब, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए, जब वो एक दफ़ा इन मुशरिकों से बात कर रहे थे, डिबेट कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि तुम देखो कि अगर आखरत के ऊपर बात की कि अगर आखरत नहीं है जैसे तुम कहते हो तो मुझे तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है नहीं होगी, लेकिन अगर आखरत वाकई है जैसे मैं कहता हूं तो तुम बताओ तुम्हारा क्या बनेगा? अब ये अगर का मतलब, कहने का मतलब ये नहीं है कि उनको खुद भी शक पड़ गया था, वो उनको बता रहे हैं कि अगर तो तुम्हारी बात सही है तो मेरा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, जाहिर है आप तो नेक काम करते ही रहे, लेकिन अगर मेरी बात सही हो गई तो तुम्हें कौन बचाएगा, फिर तुम्हारा बनेगा क्या फिर? तो ये उनके शक की बात करें, वो कह रहे हैं ना हमें शक है, तो अगर अब तुम्हें शक है मतलब 50% ये है कि पता नहीं ये सच्चा है, 50% ये है कि पता नहीं ये झूठा है, बेचैन है इसमें, तो सोचो कि अगर मैं बय्यिना पे हूं और मैं मुझे अल्लाह ताला ने नबुवत भी दी है, तो मैं अगर फिर भी उसकी नाफरमानी कर दूं तो मुझे बचाएगा कौन? फमा तजीदूनी गैरा तकसीर, तो नहीं तुम ज्यादा दे सकते मुझको सिवाय खसारे के, तुम मेरी फिर अगर ऐसा मैं करता हूं तो तुम मुझे कुछ बचा नहीं सकोगे, तुम तो मेरे लिए खसारा ही करोगे फिर। तुम मेरी तबाही करोगे अगर मैं उसकी नाफरमानी करके तुम्हारी बात मान लेता हूं। भाई ओ कौमी हादी नाकतुल्लाहि लकुम, और ए मेरी कौम ये अल्लाह की ऊँटनी है तुम्हारे लिए, एक निशानी है, क्योंकि इन्होंने खुद ही निशानी मांगी थी कि हमें ऊँटनी एक निकले और मोजा एक आएगा तो फिर हम मानेंगे। तो अब वो पता है कि जो कौमें जब मोजा मांगती हैं और उसके बाद अगर वो ईमान ना लेकर आए तो अल्लाह ताला उन कौमों को तबाह कर देता है, जैसे कि मुशरिकीन ने मक्का ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा था कि हमें सफा पहाड़ी सोने की बना दे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ करने लगे, उन्होंने कहा अगर ये बना देते हैं ना तो हम ईमान ले आएंगे, आपने दुआ करनी शुरू कर दी, जिब्राईल अलैहि सलाम आए और फरमाया अगर आप कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है हम इस पहाड़ी को सोने की बना देते हैं, लेकिन इसके बाद अगर ये ईमान ना लेकर आए तो उनको वो अजाब होगा जो कभी भी नहीं किसी को हुआ होगा। और दूसरे ये है कि आप इस चीज को छोड़ दें कि ये पहाड़ी सोने की बनाई जाए, इसकी बजाय अल्लाह ताला आपकी उम्मत के लिए दरवाज़ा खोल देता है तौबा का, कि ये जब तक मरते दम तक कभी भी तौबा कर लें अल्लाह ताला कबूल करेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तौबा का दरवाज़ा खुला रखने को चूज़ किया और इस मोजे को दिखाने को नहीं। तो कौमें मोजे मांगती रही हैं मगर मोजे देख के कोई ईमान नहीं लाता, क्योंकि मोजे की ज़रूरत नहीं होती, जो जो नबी खुद बात कर रहा होता है दलील के साथ वो इनाफ होती है। अब इन्होंने कहा हमें मौजा दिखाए, मौजा आ भी गया, उन्होंने माना ही नहीं, और इनको कहा गया फजरुह ताकुल फी अर्दिल्ला, अब छोड़ दो इसको ये जमीन में, अब अल्लाह की जमीन में चरती फिरती रहे, वला तमसूहा बिसू इन, तो इसको याद रखना कि बुराई के साथ हाथ ना लगाना, फयाखुदकुम अदाबन करीब, तो पकड़ लेगा तुमको करीबी अजाब, उसी वक्त तुम्हारे पर अजाब आ जाएगा अगर तुमने इसको हाथ लगाया बुराई के साथ। अल्लाह का मौजज़ा थी नाकतुल्ला, इसलिए कहा कि अल्लाह की तरफ से आई थी, अल्लाह की निशानी थी एक, फ़अक़रुहा, तो उनको बहुत मसला पड़ गया क्योंकि वो ऊँटनी जो थी वो एक दिन उसकी पानी पीने की बारी थी, कुएं से एक दिन वो सारा ही पानी पी लेती थी, दूसरे दिन इन लोगों के पानी की बारी होती थी ये पानी पीते थे, फिर वो खेतों में जिधर मर्जी चरती चुगती फिरती थी। अब ये वो चीज़ होती है ना जिसको कहते हैं जब दुनिया परस्त होते हैं तो उनको बहुत अपनी इकोनॉमी का फिक्र होती है, तो वो फिर कहते हैं कि जो चीज़ भाई हमारी तो इकोनॉमी ख़राब हो रही है, ये सारा ये तो जहाँ मर्जी खाती पीती है पानी भी पीती है, एक दिन इसका ही पानी कब की बारी है, हमारी तो हमारे रिसोर्सेस कम हो रहे हैं, जैसे आज हमारे यहाँ लोग कहते हैं बच्चे कम पैदा करो क्योंकि हमारे तो वसाइल ही खत्म हो जाएंगे, क्योंकि वसाइल तो पैदा करने वाले हम ही हैं ना, हम ही पहले बच्चों को खिलाते थे, पिछली दौर में भी लोगों को हमने ही खिलाया, शायद आगे भी हमने ही खिलाना है, तो इसीलिए हमें ये फिक्र हो जाती है कि हमारे वसाइल ना कहीं कम हो जाए, वसाइल के मालिक हमने अपने आप को समझा होता है, ऐसा ही है। वसाइल अल्लाह तो नहीं देता, वसाइल तो हम ही पैदा करते हैं ना, तो वो खत्म हो जाएंगे ना जब ये खा लेंगे, तो और आए तो वो फिर कम पड़ जाएंगे, पूरे नहीं पड़ेंगे। जिसने अभी वसाइल दिए हैं इतने करोड़ों को, तो वो आगे 1 करोड़ को जो वसाइल देने वाला है, 2 को नहीं दे सकता। तो उनको भी बड़ी बड़ी परेशानी हुई, उन्होंने कहा ये तो पहले तो हम हर दिन कुएं से जब मर्जी पानी निकालते थे, अभी एक दिन यही पीती है, अब क्या करें। उन्होंने कहा भाई इसका काम ही खत्म करो, उन्होंने जाके उसकी टांगे ही काट दी, ना चलेगी ना कुछ करेगी। और कहा गया था इनको कि इसको उस बुराई के साथ ना हाथ लगाना, ये तकलीफ ना पहुंचाना। तो फिर सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा फकाला तमत्ताउ फी दारिकुम 3 अय्याम, बताया था इनको कि अजाब आ जाएगा मगर डरते नहीं थे, फायदा उठा लो अपने घरों में अब 3 दिन, जालिका वादुन गैरु मक्तूब, ये वादा है जो झूठ नहीं हो सकता। जब अल्लाह ताला ने फरमा दिया अपने नबी के जरिए कि अगर तुमने इसको तकलीफ पहुंचाई तुम्हारे ऊपर अजाब आएगा, तो परवाह ही नहीं। जैसे आज भी बहुत सारी चीजों के ऊपर है कि इसके ऊपर अब अजाब है, इसके ऊपर जहन्नुम है, इस गुनाह के ऊपर ये, हाँ तो परवाह ही नहीं है, हमें क्या परवाह। लेकिन जब अल्लाह ताला किसी चीज का वादा करता है तो वो पूरा होने वाला है, तो ऐसी बातें नहीं होती, वो झूठ नहीं होता। फलम्मा जाया अमरुना, फिर जब आ गया हमारा हुक्म, यानी वो 3 दिन गुजर गए, नज्जैना सालेहन वल्लदीना आमनू माअहु बिरहमतिन मिन्ना, तो हमने निजात दी सालेह अलैहिस्सलाम को और उन लोगों को जो ईमान लाए उसके साथ, अपनी रहमत की अपनी तरफ से रहमत के साथ, व मिन खिज़्यि यौमिइज़िन, और उनको उस दिन के अजाब से, उस दिन की रुसवाई से भी बचा लिया। लेकिन ये रुसवाई दुनिया की भी और आखरत की भी रुसवाई से अल्लाह ने उनको बचाया। दुनिया की रुसवाई ये तो रुसवाई थी ना जिस अजाब के अंदर वो मुब्तला हुआ, और आखरत में भी अल्लाह ताला इनको रुसवाई से बचाएगा, सालेह अलैहिस्सलाम और इनकी साथ ईमान वालों को। इन्ना रब्बका हुवल कवीयुल अज़ीज़, बेशक तेरा रब कुव्वत वाला है, यानी वो कोई रोक नहीं सकता उसके फैसले नाफिज होने से, जो वो फैसला कर ले उसको कोई रोकने वाला नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, कोई ताकत बन के उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता, वो बड़ी कुव्वत वाला है, वो गालिब है। वह अखद अल्लादीन तलम सही हाथू, तो पकड़ लिया उन लोगों को जिन्होंने जुल्म किया एक चिंगाड़ ने, बाज़ कहते हैं जिब्राईल अलैहिस्सलाम की चीख थी, बाज़ कहते हैं कड़क इतनी जोर से थी। फ़ासवाउफ़ी दियारहिम जासिमीन, उन्होंने तो बड़े मजबूत घर बनाए थे कि आंधियां चलेंगी तो हमें कुछ नहीं नुकसान होगा, कुछ नहीं हमारा होता, तो रातों रात ही उनका काम तमाम हो गया, जिधर पड़े थे उठ के भागने की भी नौबत नहीं आई, ऐसी चीख थी कि जिधर थे उधर ही उंधे मुंह गिर गए। सुबह हुई तो बस्ती खत्म हो चुकी थी, वहां पे कोई जिंदा नहीं था। इंसान की औकात बस इतनी ही है कि वो एक चीख की आवाज को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता, उसका दिमाग फट जाता है, कानों के पर्दे फट जाते हैं, मौत वाकई हो जाती है अगर बहुत जोर की आवाज इंसान सुने। लेकिन इंसान अपने आप को ना बहुत बड़ी चीज समझता है, फिर भी बहुत बड़ी चीज समझता है, ये वाकयात पढ़ के भी ना उसको बड़ा रहता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, मैं बहुत बड़ी चीज हूं। क्या चीज है वो, खुद सोचें अल्लाह ताला के आगे तुम क्या चीज हो। अल्लाह अकबर, का अल्लम यगनौ फिया, वो ऐसे थे जैसे कभी बसे ही ना हो, बिल्कुल फना हो गए। जाहिर है एक शहर जो जिसमें आबादी, जिसमें चहल पहल, जिसमें शोर शराबा, वो बिल्कुल खामोश हो गया, ऐसे जैसे यहाँ पे कोई रहता ही नहीं था। और आज तक कैन यू इमेजिन कि वो जगह कभी नहीं बसी, क्यों नहीं जाके लोग वहां पे ले लेते, वो तो सारी चीजें बनी हुई है, बनी बनाई के अंदर जाके रहने शुरू हो जाए, कब्जा कर ले वहां पे, या तो यहाँ पे वैसे जमीन जरा सी छोड़े लोग कब्जा कर लेते हैं तो वहां पे क्यों नहीं कर लेते। तो अल्लाह ताला ने ऐसी जमीनों को, ऐसी जगहों के ऊपर देखिए अला बोअद ली समूद, बोध है बोध, लानत आज तक नहीं बच सकी। अला इन्ना समूदा कफारू रब्बहुम, इतना बड़ा गुनाह है ना, इसकी वजह से वो डूबे। सुन लो उन्होंने क्या जुर्म किया था, बंदा सोचता है ना क्या किया उन्होंने, उन्होंने कुफर किया अपने रब से। अल्लाह अकबर, अला बुअद ली समूद, खबरदार लानत हो समूद के लिए। ये लान है हमें सुनाने के लिए कि सुन लो जो फिर अल्लाह तला का कुफर करते हैं फिर उनका अंजाम क्या होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कभी इस तरह से वाइप आउट ना करना जैसे पिछली उम्मतें थी। तो अब दुनिया में आप इस तरह से नहीं देखते, क्योंकि एक आपकी उम्मत दावत है, एक उम्मत इजाबत है, वो भी उम्मत ही है, तो वाइप आउट नहीं हुआ। वरना पिछली कौमों के अंदर ऐसा हुआ है। मगर हाँ अब ये है कि इस दुनिया से कोई चला जाएगा कुफर की हालत में, तो वहां पर उसके लिए अल्लाह की रहमत से दूरी है, लानत है। अल्लाह ताला ईमान पे हमें जिंदगी गुजारने की तौफीक दे, और ये अल्लाह ईमान पे हमारा खात्मा करना, अल्लाहुम्मा सब्बितना बिहादा, अल्लाह ताला हमें ईमान के ऊपर साबित रखना, हमारी औलादों को, हमारी नस्लों को, हमारे अजीज व अकारिब को, हमारे प्यारों को, सबको ईमान पे रखना और ईमान पे उठाना। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक। तिलावत सुनिए।
وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولما جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا ربهم ألا بعدا لعاد قوم هود وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثمود كفروا ربهم ألا بعدا لثمود